पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का अंतर। क, ध्वनि और एवं रूपों में अंतर। पहला, पूर्वी हिंदी में अ का उच्चारण पश्चिमी भोजपुरी की तरह कुछ कुछ समृद्ध होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में अ का उच्चारण अधिक विपरीत होता है। दूसरा, पूर्वी हिंदी में ई और उ स्वर भोजपुरी की तरह ई और उ के रूप में इतने ह्रस्व बोले जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी वालों को अ की तरह सुनाई पड़ते हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी के ई और उ पूर्वी हिंदी वालों को ई और उ की तरह दीर्घ सुनाई पड़ते हैं। तीसरा, पूर्वी हिंदी में दो स्वरों का उच्चारण प्रायः अलग अलग किया जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में उनको मिलाकर बोला जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी में कौन, और, बैल, भैंस आदि बोले जाते हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में इनका क्रमशः कौन और बैल, भैंस आदि उच्चारण किया जाता है। चौथा, पूर्वी हिंदी में ए और औ संयुक्त स्वर के रूप में ही है, जबकि पश्चिमी हिंदी में ये दोनों स्वर संयुक्त स्वर नहीं रहे हैं, अपितु मूल स्वर होते जा रहे हैं। पांचवा, पूर्वी हिंदी में री का उच्चारण र की तरह होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में यदि री की तरह बोला जाता है। छठा, पूर्वी हिंदी में य और व के स्थान पर क्रमशः ई और उ हो जाते हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी में इनका उच्चारण य और व ही रहता है। जैसे पूर्वी हिंदी में यहाँ, वहाँ तथा पश्चिमी हिंदी में यहाँ, वहाँ, इसी तरह पश्चिमी हिंदी की या और वा के स्थान पर पूर्वी हिंदी में ए और ओ हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी या में, वा में का पूर्वी हिंदी में क्रमशः ए में और ओ में आदि। सातवां, पूर्वी हिंदी में ल का र हो जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में ल ल उच्चारण प्रचलित है। जैसे पश्चिमी हिंदी में हल का पूर्वी हिंदी में हर और पश्चिमी हिंदी में जलय का पूर्वी हिंदी में जरय आदि। यही कौरवी या निमाड़ी में हल और हलय बोला जाता है। आठवां, पूर्वी हिंदी में शब्द के मध्य में ह संधि स्वर के रूप में आता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में इसका प्राय लोप हो जाता है। जैसे पूर्वी हिंदी में दहेसी और पश्चिमी हिंदी में दिया आदि। नौवां, पश्चिमी हिंदी में जो आकारांत या उकारांत शब्द बोले जाते हैं वे ही पूर्वी हिंदी में अकारांत या व्यंजनांत हो जाते हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी बड़ा या बड़ों का पूर्वी हिंदी में बड़ या बड़ हो जाता है, तथा पश्चिमी हिंदी भला या भलों का पूर्वी हिंदी में भल या भल हो जाता है। दसवां, पश्चिमी हिंदी में आकारांत शब्द का अंतिम अ कर्ता में तो सुरक्षित रहता है, जबकि वह तिर्यक रूप में ए के अंदर परिणत हो जाता है, परंतु पूर्वी हिंदी में कर्ता और तिर्यक दोनों रूपों में आ सुरक्षित रहता है। जैसे पश्चिमी हिंदी घोड़ा यानी कर्ता, घोड़े यानी तिर्यक, पूर्वी हिंदी घोड़ा कर्ता और घोड़ा तिर्यक। ख, परसर्गों में अंतर। पहला, पूर्वी हिंदी में कर्ता के लिए कोई भी परसर्ग प्रयुक्त नहीं होता, जबकि पश्चिमी हिंदी में ने, 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 ने का प्रयोग होता है। दूसरा, पूर्वी हिंदी में कर्म और संप्रदाय के लिए का, का, के, कह, को परसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में को, कौ, कु, 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 ख, क परसर्गों के काम में लाया जाता है। तीसरा, पूर्वी हिंदी में करण और अपादान के लिए सेति, सेनी, सौ, सन, ते परसर्गों का प्रयोग होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में से, सी, सु, तें, ते, सें, स्वें, सो का प्रयोग में लाया जाता है। चौथा, पूर्वी हिंदी में संबंध के लिए को, का, क, कर, के, की परसर्गों का प्रयोग होता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में का, के, की, कौ, को का प्रयोग होता है। पांचवा, पूर्वी हिंदी में अधिकरण के लिए मह, मा, म, पर परसर्गों का प्रयोग किया जाता है, जबकि पश्चिमी हिंदी में मे, मैं, पर, पै, पे, मा ही परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ग, सर्वनामों में अंतर। पहला, पूर्वी हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में मह मे रूप प्रचलित है, जबकि पश्चिमी हिंदी में मैं, में के अतिरिक्त हौ, हौ रूप भी बोले जाते हैं। दूसरा, पूर्वी हिंदी में संबंध के लिए मोर, तोर, हमार, त्योहार रूप प्रचलित है, जबकि पश्चिमी हिंदी में मेरो, तेरो, हमारो, मारो, तिहारो रूप प्रचलित है। तीसरा, पूर्वी हिंदी में अन्य पुरुष के उई उओ रूप प्रचलित है, जबकि पश्चिमी हिंदी में उस बोला जाता है। चौथा, पश्चिमी हिंदी में संबंध एवं सहसंबंधवाचक सर्वनामों के जो सो कौन रूप क्रमशः पूर्वी हिंदी में जवन तमन कमन बोले जाते हैं। घ, क्रिया रूपों में अंतर। पहला, पश्चिमी हिंदी में वर्तमान काल की सहायक क्रियाओं के लिए ह का अधिक प्रयोग होता है, जैसे हैं, है, हूं, हौं, हो आदि। परंतु पूर्वी हिंदी में ह वाले रूप के अतिरिक्त बाट वाले रूपों का भी प्रयोग होता है, जैसे बाटें, बाटें, बाटे, बाटो आदि। दूसरा, पश्चिमी हिंदी में भूतकाल के लिए थ, ह और हत वाले रूपों का प्रयोग होता है, जैसे था, थे, थी, हो, ही, हे और हति, हते, हतो आदि। परंतु पूर्वी हिंदी में केवल रह वाले रूपों का ही प्रचार है, जैसे रहो, रहे, रहन, रहे, रहिस आदि। तीसरा, पश्चिमी हिंदी में भविष्यत काल के लिए ग वाले रूपों का प्रयोग होता है, जैसे देखेगा, देखोगे, देखूंगा आदि। परंतु पूर्वी हिंदी में ह वाले रूप भविष्यत काल में आते हैं, जैसे देखी हैं, चली हैं आदि। चौथा, पश्चिमी हिंदी में क्रियार्थक क्रियाएं न, अड़, और बौध तीनों के योग से बनाई जाती हैं, जैसे चलना, चलाड़ा, चलिबो आदि। परंतु पूर्वी हिंदी में ये रूप केवल बौक योग से ही बनाए जाते हैं, जैसे चलब, देखब, रहब आदि। पांचवा, पश्चिमी हिंदी में भूतकालिक वृत्तांत रूप तो सौरश्रेणी प्राकृत के समान चलते हैं, जैसे सौरश्रेणी प्राकृत मारिदो का ब्रज में मार्यो होता है। परंतु पूर्वी हिंदी में ये रूप कहीं तो सौरश्रेणी प्राकृत के समान और कहीं मागधी प्राकृत के समान चलते हैं, जैसे मार्यो, मारिस, मारिस आदि। सारांश यह है कि पश्चिमी हिंदी का विकास सौरश्रेणी से हुआ है, इसी कारण इसके अतिरिक्त रूप सौरश्रेणी अभ्रंश के मिलते जुलते हैं, जबकि पूर्वी हिंदी के संज्ञा एवं सर्वनाम रूपों का विकास तो मागधी से हुआ है, परंतु पूर्वी हिंदी क्रिया रूपों में से कुछ तो सौरश्रेणी से विकसित हुए हैं और कुछ मागधी से। इस तरह क्रियापदों के संबंध में पूर्वी हिंदी माध्यम मार्ग का अनुसरण करती हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी की प्रतिनिधि है, जबकि पश्चिमी हिंदी पूर्णतया सौरश्रेणी का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी ध्वनियों का परिचय। क, हिंदी की स्वर ध्वनियां। हिंदी में कुल 13 स्वर ध्वनियां प्रचलित हैं। अ, इ, उ, 3 ह्रस्व ध्वनियां हैं और आ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ऐ, ओ, ओ, औ, 10 दीर्घ ध्वनियां। परंतु इनमें से ऐ ध्वनि का निर्माण अधन ई से हुआ है, औ का निर्माण अधन ऊ से हुआ है, आ ध्वनि अंग्रेजी से आई है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। यह अर्धविवृत अग्रविस्तृताकार दीर्घ स्वर है, जिसका प्रयोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में तद्भव शब्दों में होता है। औ, यह भी अर्धविवृत पश्चवर्तुलाकार दीर्घ स्वर है, इसका प्रयोग भी तद्भव शब्दावली के अंतर्गत होता है। शेष 8 ध्वनियों का विकास इस प्रकार हुआ है। पहला, अ, यह अर्धसमृत मध्य स्वर है, इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अ, आ, ई, ई, उ, रे, ए आदि से हुआ है, जैसे अ से अ, अगरु से अगर, आ से अ, जैसे आभीर से अहिर, ई से अ, यानी परिख से परख, ई से अ, वाराणसी से बनारस, उ से अ, कुमार से कुंवर, री से अ, मृत्तिका से मट्टी, मट्टी, ए से अ, नारिकेल से नारियल आदि। दूसरा, आ, यह विवृत पश्चस्वर है, इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की अ, आ, उ ध्वनियों से हुआ है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसका विकास उ धन अ से भी सिद्ध किया, जैसे बुरु से बुरा, परंतु यह अधिक उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, केवल उ या केवल अ से इसका विकास हुआ है, जैसे आ से आ, 22 से 22, अ से आ, कज से काज, फागुन से फागुन, उ से आ, जैसे फरसु से फरसा। तीसरा, ई, यह हिंदी का समृद्ध ह्रस्व अग्रस्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय भाषा की अ, ई, ई, री ये ध्वनियों से हुआ है, जैसे अ से ई अंधकार से अधियार, ई से ई यानी दक्षिण से दक्षिण, ई से ई यानी शीरीष से शीरीष, री से ई कृष्ण से किशन, ए से ई एक विंशत से इक्कीस आदि। चौथा ई, यह हिंदी का समृद्ध दीर्घ अक्षर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ई, ई, री से हुआ है, जैसे ई से ई, ईंधन से ईंधन, कंचुलिया से कांचरी, ई से ई चित्कार से चिंगार, छीण से छीना, दीपक से दीवा, यानी री से ई पृष्ठ से पीठ, ग्रंथ से गीध, गृत से घी आदि। पांचवा उ, यह हिंदी का समृद्ध ह्रस्व पार्श्व स्वर है। इस ध्वनि का विकास भारतीय भाषाओं की उ, उ, उ ध्वनियों से हुआ है, जैसे उ से उ, कुठारक से कुल्हाड़ा, कुंभकार से कुम्हार, ठक्कुर से ठाकुर, उ से उ, उपिका से कुइया, उपक से कुआं, उ से उ, मूषण से मूसना, लोहकार से लोहार आदि। छठा ऊ, यह हिंदी का समृद्ध दीर्घ पार्श्व स्वर है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की उ, उ, री, ओ, आओ ध्वनियों से हुआ है, जैसे उ से ऊ, ऊपरी से ऊपर, उष्ट से ऊंट, ऊ से ऊ, ऊण से ऊन, घूर्ण से घूम, री से ऊ, वृद्धक से बूढ़ा, पृष्ठ से पूछा, ऊ से अ, गंडोल से गंडोला, दोला से झूला, औ से ऊ, शौंडिक से शूंड, पौष से पूस आदि। सातवां ए, यह हिंदी का अर्ध समृद्ध दीर्घ अग्रस्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की अ, ई, री, ए, आय ध्वनियों से हुआ है, जैसे अ से ए, कंदुक से गेंद, वल्ली से बेल, ई से ए, सिंदूर से सेंदूर, किंचुक से केस, कर्णिकार से कन्नेर, री से ए, वृंत से बेंट, गृहिका से गेह, ए से ए, चित्र से खेत, ज्येष्ठ से जेठ, आय से ए, तैल से तेल, कैवट से केवट आदि। आठवां ओ, यह हिंदी का अर्ध समृद्ध दीर्घ पार्श्व स्वर है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की उ, ओ, औ ध्वनियों से हुआ है, जैसे उ से ओ, कुक्ष से कोंक, पुष्ट से कोड़, ओ से ओ, कुश से कोठा, कोकिल से कोइल, ओ से ओ, गौरी से गौरी, द्वारिका से द्वारी आदि। ख, हिंदी के व्यंजन ध्वनियाँ। हिंदी में आजकल 43 व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग होता है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ड, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये 31 ध्वनियाँ तो प्राचीन हैं, इनके अतिरिक्त 5 अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, क, ख, ग, ज, फ। इनके साथ ही 7 नई ध्वनियों का प्रचलन बढ़ा है, ड, ड, न, म, ल, र और ब। उक्त ध्वनियों में से 5 अरबी फारसी ध्वनियाँ तो स्पष्ट विदेशी हैं, जिनका उल्लेख आगत विदेशी ध्वनियों के अंतर्गत किया जाएगा। शेष ध्वनियों का विकास इस प्रकार हुआ है। क, यह हिंदी के कंठ स्पर्श अल्प प्राण एवं अघोष ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की क और स्क ध्वनियों से हुआ है। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने क, श, क, क आदि ध्वनियों से इसका विकास सिद्ध किया, जैसे क से क यानी कटुक से कड़वा, काक से काक, स्क से क, स्कंद से कंधा, स्कंद से कंद, क से क, चक से चाक, मकड़ से मकड़ी, अश्क से क, चतुष्क से चौक, क से क, मणिक में मानिक, क से क यानी पक्को से पका आदि। ख, यह हिंदी की कंठ स्पर्श महाप्राण अघोष ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के क, ख, छ, श्क, श्क, श, ख ध्वनियों से हुआ है। जैसे क से ख, करपर से खप्पर, ख से ख, खदिर से खैर, खट्टा से खाट, छ से ख, चीर से खीर, छार से खार, स्ख से ख, स्कंभक से खंभा, अश्ख से ख, पुष्कर से पोखर, शुष्क से सूखा, श से ख, वर्षा से बरखा, भाषा से भाखा, ख्य से ख, व्याख्यान से बखान। ग, यह हिंदी की कंठ, सघोष, स्पर्श, अल्पप्राण ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की क, ख, ग, ज्ञ आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे क से ग, काक से काक, कंकड़ से कंगन, ग से ग, गर्दभ से गधा, गल से गला, ग्र से ग, ग्रंथ से गांठ, ग्राम से गांव, ज्ञ से ग, ज्ञान से ज्ञान, यज्ञ से यज्ञ। घ, हिंदी के कंठ, सघोष, स्पर्श और महाप्राण ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ग, धन, ह, घ, घ्र ध्वनियों से हुआ है। जैसे गे, धन, ह से घ, ग्रे से घर, विग्रह से बीघा, घ से घ, गर्भ से घाम, घोटक से घोड़ा, घ्रह से घ, व्याघ्र से बाघ। अंग, यह पर निश्चित हिंदी की सघोष, अल्पप्राण, कंठ, अनुनासिक ध्वनि। इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दावली में ही होता है। हिंदी के बोलियों में यह ध्वनि लुप्त हो गई है। इसका सही उच्चारण भी प्रायः समाप्त सा हो गया है। च, यह हिंदी की तालव्य, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श संघर्षित ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की च, त्य, त्व, च, च, स ध्वनियों से हुआ है। जैसे च से च, चंद्र, सु, चांद, चंच से चोंच, त्य से च, नित्य से नाच, सत्य से साँच, त्व से च, श्रुत्वा से सोचा या सोच, च से च, पंच से पाँच, अंचल से आंचल, च से च, कुचिका से कूच, स से च, लालसा से लालच। छ, ये हिंदी की तालव्य, महाप्राण, अघोष, स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के छ, श, श, छ ध्वनियों से हुआ है। जैसे छ से छ, छादन से छावन, छत्र से छाता, श से छ, शकटक से छकड़ा, साल से छाल, श से छ, षट से छह, षष्ठक से छठा, छ से छ, छुरिका से छुरी, क्षमा से क्षमा आदि। ज, यह हिंदी की तालव्य, अल्पप्राण, सघोष, स्पर्श संघर्षी ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ज, य, र, द्य, च आदि ध्वनियों से हुआ है। जैसे ज से ज, जड़ से जड़, जम्बुल से जामुन, य से ज, यौवन से जोबन, युग्गम से जुआ, र से ज, कर से काज, द्य से ज, अद्य से आज, वाद्य से बाजा, च से ज, पंजर से पिंजरा आदि। झ, हिंदी की तालव्य, महाप्राण, सघोष, स्पर्श संघर्षित ध्वनि है। इसका रूप प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में अधिक नहीं मिलता, किंतु मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में इसकी प्रधानता हो गई थी। इसका कारण यह है कि उस समय आर्य भाषाओं पर अनार्य भाषाओं का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में हो गया था। इसी कारण इसका विकास भारतीय आर्य भाषाओं में ध, ध्य, झ ध्वनियों से हुआ है। जैसे ध से झ, युद्ध से जूझ, बुध से भुज, ध्य से झ, संध्या से स्वाच, मंध्या से बाँच, झ से झ, जड़त्कार से झंकार, झटित से झट आदि। इया, सहतालब्य, सघोष, अल्पप्राण, अनुनासिक ध्वनि, किंतु इसका प्रयोग अब साहित्यिक हिंदी में नहीं होता। इसका उच्चारण न की तरह किया जाता है और यह केवल ध्वनि तत्सम शब्दावली प्रयुक्त होता है। जैसे प्रत्यंचा, ट, यह ध्वनि हिंदी की मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ट, तर, ष्ट, ट आदि ध्वनियों से हुआ। जैसे ट से ट, यानी त्रुट से टूट, कंटक से कांटा, ऋत से ट, कैवर्त से कांटा, ष्ट से ट, इष्ट से ईंट, उष्ट से ऊंट, ट से ट, तृतीयते से टूटता, ठ। ये हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण अघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ठ थ स्थ ष्ठ ध्वनियों से हुआ, जैसे ठ से ठ, ठक्कुर से ठाकुर, शुंटिका से सौंठ, थ से ठ, ग्रंथ से गांठ, स्थ से ठ, स्थान से ठाव, ष्ट से ठ, अष्टक से मीठा, ऋष से ठीठ। ड, यह हिंदी की मूर्धन अल्प प्राण सघोष स्पर्श ध्वनि। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ड द द ध्वनियों से हुआ, जैसे ड से ड, डाकिन से डायन, डमरू से डमरू, द से ड, दन से डांस, दंडक से डंडा, द से ग, सदाशिका से सदासी आदि। और यह हिंदी की मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष उत्क्षिप्त ध्वनि है। इसकी गणना हिंदी की नवीन ध्वनियों में की जाती है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ट ड ण त ध्वनियों से हुआ, जैसे ट से अड़, घोटक से घोड़ा, अच्छवाट से अखाड़ा, ड से अड़, जाड से जाड़ा, हड्ड से हाड़, ष्ड से ड, मंड से माड़, त से ण, पत्त से पड़। ढ, यह हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण सघोष स्पर्श ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ढ ध ध्वनियों से हुआ, जैसे ढ से ढ, प्राकृत में ढिल से ढीला, ढक से ढकना, ध से ढ, दृष्ट से ढीठ आदि। ढ, यह हिंदी की मूर्धन्य महाप्राण सघोष उच्छिप्त ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ध ध ठ ध्वनियों से हुआ, जैसे ध से ठ, वर्धकिन से बढ़ई, ध से ढ, वृद्ध से बूढ़ा, अर्ध से टेढ़, ठ से अढ़, पढ़ती से पढ़ता आदि। अड़, यह ध्वनि की मूर्धन्य अल्प प्राण सघोष अनुनासिक ध्वनि है। स्वर सहित यह ध्वनि हिंदी में केवल तत्सम संस्कृत में ही मिलती है, शेष हिंदी में इसका उच्चारण न के समान हो गया है। ऐसे पंडित को पंडित, पुण्य को पुण्य उच्चारण करना, अतः यह ध्वनि अपने अनुनासिक स्पर्श ध्वनि के अस्तित्व को हिंदी में पूर्णतया खो चुकी है। तो यह हिंदी की अल्प प्राण अघोष स्पर्श दंत ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के त और त्र ध्वनियों से हुआ, जैसे त से त, तप तक से ताता, तैल से तेल, त्रक से त, गात्र से गात, पत्र से पात, पुत्र से पूत आदि। थ, ये हिंदी की महाप्राण अघोष स्पर्श दंत ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के थ स्थ स्थ ध्वनियों से हुआ है, जैसे थ से थ, चतुर्थ से चौथ, मंथनिका से मथाने, स्त से थ, स्तन से थन, हस्त से हाथ, स्थ से थ, स्थान से थान, स्थली से थाली, स्थूणी से थूनी आदि। द, ये हिंदी की अल्प प्राण सघोष स्पर्श दंत ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की द द्र द्व दृ ध्वनि से हुआ, जैसे द से द, दंत से दांत, दधि से दही, द्र से द, द्रोण से धोना, द्रम्ह से दाम, द्व से द, द्विगुण से धोना, द्व से दो, दृ से द, चतुर्दश से चौदस, दर्दस से दादुर आदि। द, ये हिंदी की महाप्राण सघोष स्पर्श दंत ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ध ध्र रुद्र ध्र धग्ध ध आदि ध्वनियों से हुआ है, जैसे ध से ध, धान्य से धान, धूम से धुआं, ध से ध, क्रद से गिद, धृ से ध, अर्धक से आधा, ध्र से ध, गर्ध से गधा, ध से ध, दुग्ध से दूध, ध से ध, बद से बदा आदि। न, यह हिंदी की अल्प प्राण सघोष वर्ष अनुनासिक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की न ल ल ज्ञ ध्वनि से हुआ, जैसे न से न, नृत्य से नाच, नापी से नाई, ण से न, गण से गिन, कर्ण से कान, पर्ण से पान, ल से न, लुंचित से नोचा, लवण से नून, ज्ञ से न, ज्ञातिग्री से नैहर, ज्ञात से नाता आदि। प, ये हिंदी की अल्प प्राण अघोष स्पर्श ओष्ट ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प प्र प प त्म प्र आदि ध्वनियों से हुआ है, जैसे से प, पंज से पांच, पठ से पढ़, प्र से प, प्रहर से पहर, प्रसर से पसर, पर से प, उत्पद्यते से उपजे, प से प, पिपल से पीपल, आत्मा से प, आत्मन से अपना, पर से प, कर्पूर से कपूर, सर्प से सांप आदि। फ, ये हिंदी के महाप्राण अघोष स्पर्श ओष्ट ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की प स्प फ ध्वनियों से हुआ है, जैसे प से फ, परसु से फरसा, स्प से फ, स्पर्श से फांस, फ से फ, फाल्गुन से फागुन, फुत्कार से फुंकार, फुल्ल से फूल आदि। प, ये हिंदी के अल्प प्राण सघोष स्पर्श ओष्ट ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ब व द्व ध्वनियों से हुआ है, जैसे ब से ब, बदरी से बेर, बंध्या से बंजा, व से ब, वानर से बादर, वट से बड़, द्व से ब, गृह द्वार से घर बार, द्वादश से बार। भ, ये हिंदी के महाप्राण सघोष स्पर्श ओष्ट ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के भ, भ्य, भ्रो, ब, म, व ध्वनियों से हुआ है, जैसे भ से भ, भिक्षा से भीग, भाद्रपद से भादो, भ से भ, अभ्यंतर से भीतर, अभ्यंज से मेघा, भ्र से भ, भ्रमर से भौरा, भ्रात से भाई, व से भ, वेश से भेष, म से भ, महिष से भैंस, ह्रस्व से भ, जीवा से जीव। म, ये हिंदी के अल्प प्राण सघोष ओष्ठ अनुनासिक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की म, म्ब, म्र, म्र, श्म ध्वनियों से हुआ है, जैसे म से म, यानी मुख से मुंह, मस्तक से माथा, म से म, निम्ब से नीम, जम्बुल से जामुन, कर्म से काम, धर्म से धाम, आम्र से आम, चाम्र से चाम, मिश्र से मोक्ष, शमशान से मसान। यह हिंदी का तालव सघोष अर्धस्वर है। इसका प्रयोग हिंदी के तत्सम शब्दों से मिलता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की यह ध्वनि तो हिंदी में आते आते ज रूप में परिवर्तित हो गई थी, जैसे यमुना से जमुना, सरयू से सरजू, याचक से जाचक आदि। परंतु कतिपय उदात्त स्वरों के साथ आई हुई यह ध्वनि हिंदी में अभी तक सुरक्षित है, जैसे गया, आया, छाया, अधियारा, उजियारा आदि। र, यह हिंदी की अल्प प्राण वर्ष सघोष लुंठित ध्वनि है। इस ध्वनि का विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के र, रि, द, रेफ से हुआ है, जैसे रात्र से रात, राजपुत्र से राजपूत, क्री से कर, मृ से मर, र से हर, सप्तदश से सत्रह, द्वादश से बारह, कर्म से कर्म, धर्म से धर्म, मर्म से मर्म आदि। ल, यह ध्वनि की अल्प प्राण सघोष वर्ड्स पार्श्विक ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के ल, ड, ढ, ळे, द्र, ळ, ळ, ल, र ध्वनियों से हुआ है, जैसे लवंग से लौंग, लांगुल से लंगूर, षोडश से सोलह, तणांग से तालाब, भद्र से भला, घूर्ण से घोल, पर्यंग से पलंग, मूल से मूल, रेखा से लेखा, बबूल से बबूल। वह, यह भी हिंदी का कंठोष सघोष अर्धस्वर है। इसका उच्चारण हिंदी द्वयोष्ठ से हो गया है। इसका विकास भारतीय प्राचीन आर्य भाषा के व म ध्वनियों से हुआ है, जैसे व से व, वचन से वचन, स्वर से स्वर, म से व, आमलक से आंवला, कुमार से कुमार आदि। स, ये हिंदी के वर्ण संघर्ष या घोष ध्वनि है। हिंदी के तत्सम शब्दों में श, श, स तीनों ध्वनियां मिलती हैं, किंतु उच्चारण के लिए श और स का ही प्रयोग होता है, क्योंकि श ध्वनि का उच्चारण हिंदी में लुप्त हो गया और उसे श बोला जाता है। इस तरह हिंदी की प्रमुख ध्वनि स है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की श, श, स ध्वनियों से हुआ है, जैसे दश से दस, शत से सौ, पौष से पूस, करषणी से कसनी, सत से सात, सर्प से सांप, स्वामी से साई आदि। ह, यह हिंदी की स्वर यंत्र मुखी सघोष पर संघर्षी ध्वनि है। इसका विकास प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की ह, श, ख, घ, थ, ध, भ ध्वनियों से हुआ है, जैसे ह, हस्त से हाथ, लौ से लोहा, द्वादश से 12, त्रयोदश से 13, आखिटक से आहिरी, मुख से मुँह, अर्घट्ट से रहट, नाथ से नाह, शपथ से सौ, बधिर से बहिरा, अभिर से हीरा, सौभाग से सुहाग आदि। हिंदी में आगत विदेशी ध्वनियाँ और उसमें परिवर्तन संबंधी नियम। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि मुस्लिम देशों तथा अंग्रेजी भाषा की कतिपय ध्वनियाँ आई हैं जो आगत विदेशी ध्वनियाँ कहलाती हैं। इन्हें सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। क अरबी फारसी ध्वनियाँ, ख अंग्रेजी ध्वनियाँ। क अरबी फारसी ध्वनियाँ। अरबी फारसी के अनेकानेक शब्द आज हिंदी में व्यवहारित होते हैं, जिनमें से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनकी ध्वनियों में हिंदी की ध्वनियों से पूर्णतया साम्य है, अतएव उनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे आ, आदमी, खुदा, हलवा, ई, इज्जत, इरादा, ई, ईमान, इजाद, उ यानी उस्तरा, उस्ताद, उ यानी उदा, ए यानी एहसान, सफ़ेद, उ तोता, मोम आदि स्वर, और क यानी किताब, ग यानी गर्दा, त यानी ताज, द यानी दूरबीन, प यानी पेशाब, ब यानी बाग, म मजदूर, व यानी वकालत आदि व्यंजन। परंतु कुछ ऐसी भी आगत ध्वनियाँ जो हिंदी में पहले नहीं थे और जिनका प्रयोग अब होने लगा है, ऐसी अरबी फारसी ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। पहला क जैसे कायदा, इलाका, काफिला आदि। दूसरा ख जैसे खराब, अखबार, खून आदि। तीसरा ग जैसे गरीब, गजर, गबन आदि। चौथा ज जैसे जंजीर, मिजाज, ज़रूरत आदि। पांचवा फ जैसे फौरन, फर, फौज आदि। अरबी फारसी की बहुत सी ऐसी ध्वनियों का प्रयोग भी हिंदी में होता है जिनमें पर्याप्त परिवर्तन दिखाई देता है। ये परिवर्तन संबंधी नियम इस प्रकार हैं। पहला स्वर परिवर्तन संबंधी नियम। अ फारसी में अ विवृत अग्र स्वर है और उसका उच्चारण और नार अंदाज की तरह होता है, किंतु हिंदी में आकर यह अर्ध विवृत मध्य स्वर हो जाता है, जैसे अनार, अंदाज आदि। फारसी में इसका उच्चारण अलग अलग ही होता है, किंतु हिंदी में आकर ए हो जाता है, जैसे फारसी में मैदह का हिंदी में मैदा, फारसी का शैनात का हिंदी में शैतान। अ और उ फारसी में इसका भी उच्चारण अलग अलग ही होता है, जबकि हिंदी में इसका उच्चारण औ हो जाता है, जैसे फारसी का फौज का हिंदी फौज, फारसी का शौकीन का हिंदी शौकीन, फारसी का दउतल का हिंदी दौलत होना आदि। दूसरा व्यंजन संबंध परिवर्तन संबंधी नियम। अरबी फारसी कतिपय व्यंजन भी हिंदी में आकर परिवर्तित ढंग से इस प्रकार उच्चरित होते हैं, जैसे फारसी का अत्यंत संघर्षी स्वाद हिंदी में आकर वर्ष संघर्षी हो जाता था, यहाँ फा यानी साबुन का ही हिंदी साबुन। फारसी के जे, जोए, जाल और ज्वाद हिंदी में आकर सभी ज हो जाती हैं, यथा जैसे रोज, जाहिर, जात, जालिम आदि। तीसरा हिंदी में न दंत है किंतु हिंदी में वर्ष हो जाता है, फारसी में न दंत है किंतु हिंदी में वर्ष हो जाता है, जैसे नौकर, नमाज, दुनिया आदि। चौथा फारसी में च, ज, य, श सभी ध्वनियाँ तालव्य वर्ष हैं, किंतु हिंदी में आकर ये तालव्य हो जाती है, जैसे आचार, जंजीर, याद, शीशा आदि। पांचवा फारसी में र, ल ध्वनियाँ भी तालव्य वर्ष हैं, किंतु हिंदी में आकर वे वर्ष हो जाती हैं, जैसे चरखा हिंदी में चरखा, फारसी में लिफाफह हिंदी में लिफाफा आदि। छठा अरबी फारसी के शब्दांत में आने वाली ह ध्वनि हिंदी में आकर आ हो जाती है, जैसे तमाह का तमाशा, इरादह का इरादा। सातवां अरबी फारसी की हमजा अलिफ यहाँ शब्दों के मध्य में आती है, वहाँ वह हिंदी में आ हो जाता है, जैसे काबास, बाद, इनाम, मशाल आदि। ख अंग्रेजी ध्वनियाँ। अंग्रेजी की ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ हिंदी में पाई जाती हैं जो हिंदी ध्वनियों में पूर्ण साम्य रखती हैं, जैसे आ क्लास, ई यानी टीम, उ यानी जून, ग यानी गिलास, ब बैंक, न नंबर, म मोटर, य यूनिवर्सिटी, स साइकिल, ज जीरो, परंतु कतिपय ऐसी भी ध्वनियाँ हिंदी में आए जो हिंदी को कुछ परिवर्तित ढंग से बोली जाती है। इनके परिवर्तन संबंधी नियम इस प्रकार है। स्वर परिवर्तन संबंधी नियम, अंग्रेजी का ए उच्चारण हिंदी में अ व आ हो जाता है, जैसे अकेडमी का अकादमी। दूसरा, अंग्रेजी ई का उच्चारण हिंदी में ए हो जाता है, जैसे कॉलेज का कॉलेज। तीसरा, अंग्रेजी ई का उच्चारण हिंदी में कहीं कहीं ई हो जाता है, जैसे डिप्टी का डिप्टी, हॉस्टल का हॉस्टल आदि। चौथा, अंग्रेजी के ओ का उच्चारण कहीं आ कहीं अ कहीं ओ हो जाता है, जैसे डॉक्टर का डॉक्टर, बॉक्स का बॉक्स, ऑफिस का ऑफिस। पांचवा, अंग्रेजी के आई का उच्चारण कहीं ई और कहीं अ की तरह होता है, जैसे निब का निब, मिल का मील, ऑफिसर का ऑफिसर। छठा, अंग्रेजी के ए आई का उच्चारण हिंदी में आय हो जाता है, जैसे मेल का मेल, जेल का जेल आदि। सातवां, अंग्रेजी के ओयू का उच्चारण हिंदी में ओ हो जाता है, जैसे कोर्ट का कूट, कोर्ट का कूट आदि। आठवां, अंग्रेजी में आई और वाई का उच्चारण हिंदी में आई हो जाता है, जैसे पाइप का पाइप, टाइप का टाइप, टाइम का टाइम आदि। नौवां, अंग्रेजी में ओ यू का उच्चारण हिंदी में ओ भी हो जाता है, जैसे पाउंड का पौंड। दसवां, अंग्रेजी में ई ए का उच्चारण हिंदी में ए हो जाता है, जैसे थिएटर का थिएटर या थिएटर आदि। दूसरा, व्यंजन परिवर्तन संबंधी नियम। अंग्रेजी के ट ड वर्ष ध्वनियां हिंदी में आकर यहाँ कहीं तो दंत त द हो जाती हैं, कहीं मूर्धन्य ट ड हो जाती है, जैसे दंत अक्टूबर का अक्टूबर, डर्जन का दर्जन और मूर्धन्य टैक्स का टैक्स, डॉक्टर का डॉक्टर आदि। दूसरा, अंग्रेजी की थ और द ध्वनियां दंत संघर्ष, जबकि हिंदी में वह दंत स्पर्श हो जाते हैं, जैसे थेसिस का थीसिस, थर्मोमीटर का थर्मामीटर, फादर फेदर का फादर आदि। तीसरा, अंग्रेजी की वी और डब्ल्यू दोनों ध्वनि हिंदी में व हो जाता है, जैसे ओवरकोट का ओवरकोट, वैगन का वैगन आदि। चौथा, अंग्रेजी का क हिंदी में ग हो जाता है, जैसे कॉर्क का कॉग आदि। पांचवा, अंग्रेजी में र के स्थान पर हिंदी में कहीं कहीं ड़ हो जाता है, जैसे रबर का रबड़, बेचर का बूचड़ आदि। छठा, अंग्रेजी का ह हिंदी में कहीं कहीं अ हो जाता है, जैसे हॉस्पिटल का अस्पताल। सातवां, अंग्रेजी की मध्यवर्ती र का हिंदी में कहीं कहीं लूप हो जाता है, जैसे रिपोर्ट का रपट, ड्रावर्स का दराज, ऑर्डर का आर्डर, आर्डरी का आर्डरी आदि। आठवां, अंग्रेजी कुछ शब्दों में व्यंजन के पूर्व या शब्दांत में र का उच्चारण नहीं होता है, किंतु हिंदी में इसको बोला जाता है, जैसे बुशर्ट, ओवरकोट, ओवरसियर, पार्क, काला आदि शब्दों में अंग्रेजी में र नहीं बोला जाता, जबकि हिंदी में इसका उच्चारण किया जाता है। हिंदी के परसर्गों का विकास। संस्कृत में जिन्हें विभक्तियां कहते हैं वही हिंदी में परसर्ग अथवा कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन परसर्गों की उत्पत्ति बड़े अद्भुत ढंग से हुई है। इनमें से कुछ तो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का संज्ञा रूप ही हैं, जो घिसते घिसते आज इस स्थिति में आ गए हैं, और कुछ मध्यकालीन भाषाओं के शब्दों में लगाए जाने वाले वे सहकारी रूप हैं, जो आज विकृत होते होते इन रूपों में अवशिष्ट रह गए हैं। आज ये रूप घिसते घिसते इतने लघु एवं अवशेष मात्र रह गए हैं कि उनके मूल रूप को समझना तथा उनके प्रति उनके आदि रूप का पता लगाना भी दुष्कर हो गया है। इसके साथ ही आज इन परसर्गों का स्थान हिंदी के शब्द भंडार में नगण्य हो गया है, इसीलिए अब इनका उपयोग संज्ञा रूपों के साथ लिखने के लिए होता है, और ये परसर्ग अब केवल संबंध तत्व के द्योतक मात्र रह गए हैं। इनका ऐतिहासिक विकास उनके ढंग से हुआ है। पहला, ने। इस परसर्ग का उपयोग भूतकाल के अंतर्गत कर्ता कार्य के कर्मणी एवं भावे प्रयोगों से होता है, जैसे मैंने चार कबूतर देखे, कर्मणी प्रयोग, तथा मैंने चार कबूतरों को देखा, भावे प्रयोग। शिष्य काल में हिंदी के अंतर्गत कर्ता कारक के इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। प्रायः यह परसर्ग बोलना, भूलना, बकना, लाना, समझना, जनना आदि सकर्मक क्रियाओं को छोड़ शेष सभी सकर्मक क्रियाओं एवं नहाना छींकना खांसना आदि अकर्मक क्रियाओं के भूतकालिक कृदंग से बने कालों के साथ प्रयुक्त होता है। इससे पहला बीम्स ने नेय परसर का विचार करण कारक के अंतर्गत किया है। उनका कथन है कि गुजराती नेपाली मराठी आदि भाषाओं के संप्रदान तथा करण कारक के चिन्ह समान थे, इसलिए पुराने हिंदी की कर्म कारक चिन्ह नय और आधुनिक हिंदी के कर्तिकारक कर्ता कारक चिन्ह नेय में पूर्णतया साम्य है। ट्रंप, क्रामपा प्रसाद गुरु, किशोरीदास, वाजपेयी आदि विद्वानों ने इस नेय परसर का संबंध संस्कृत के अकारांत क्रियाओं के कारण करण चिन्ह के लिए एन से स्थापित किया है। इस पर आपत्ति यह है कि एव का रूप चंद्रपरदाई ग्रंथ में तथा मराठी में ए और गुजराती में ए हो गया है, अतः इनका नेय होना सर्वथा असंभव है। इसी कारण बिम्स ने इसकी उत्पत्ति एन से स्वीकार नहीं की है। दूसरा, हार्नली का विचार है कि संप्रदान के लिए ब्रजभाषा में कौ या को और मारवाड़ी में नय या नय का प्रयोग होता है। संभवतः नय को संप्रदान के लिए अनावश्यक जानकर हिंदी वालों ने सप्रत्यय कर्ता या करण कारक के लिए इसे अपना लिया हो। तीसरा, ब्लॉक ने जॉर्ज ग्रियर्सन से बहुत कुछ सहमत होकर नय का संबंध संज्ञा तन से स्थापित किया है। केलाक ने इसका विकास संज्ञा लग्ञ, संस्कृत लग्ञ, प्राकृत लग्यो, हिंदी लागी, लय या लेने से मानते हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और डॉक्टर कुमार सुकुमार सेन के मतों का उद्धृत करके नय की उत्पत्ति संस्कृत कर्ण से सिद्ध की है। इन विद्वानों का विचार है कि नय का प्राचीन रूप कने था। यह कने शब्द आज भी कन्नौजी में समीप के अर्थ का द्योतक है। जैसे मेरे कने आओ अर्थात मेरे पास आओ। संस्कृत में कर्ण का मध्यकाल की भारतीय भाषाओं में कर्ण रूप बनता है और अपभ्रंश में इसका अधिकरण रूप कर्ण नहीं मिलता है। इसमें पूर्ववर्ती क और अंतिम ह का लोप हो जाने पर नई रूप बनता है और मूर्ण संधि द्वारा नये रूप बन सकता है। आपका विचार है कि संस्कृत में कर्ण का अर्थ कान होता है जो सामिपिका बोधक होता है, अतः यह ने पर सर्ग भी संज्ञा और क्रिया के बीच संबंध जोड़ने में प्रयुक्त होता है। दूसरा, को इस पर सर का प्रयोग कर्म और संप्रदान कारक के लिए होता है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियों में कर्म और संप्रदान के लिए प्रायः को पर सर का अधिक प्रयुक्त होता है, वैसे संप्रदान के लिए परसर का भी प्रयोग होता है। पहला, ट्रंप ने को की उत्पत्ति संस्कृत कृत से सिद्ध किया जिसका प्राकृत रूप कीतो या कियो होकर अंत में को हो जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी कुछ संशोधन के साथ इसी भी उत्पत्ति को स्वीकार किया है, जैसे कृतन से कंत, कंत से कंद, फिर कं, फिर कह, फिर कहूँ, फिर कहूँ, फिर कौ, फिर को, परंतु बिम्स आदि विद्वान ने कृतम की उत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया है। बिम्स तथा हार्लिली ने को का संबंध संस्कृत कक्ष से स्थापित किया। डॉक्टर सुनीति चटर्जी आदि विद्वान भी इसी व्युत्पत्ति को ठीक मानते हैं। अर्थ की दृष्टि से भी कक्ष से इसका विकास समय चीन जान पड़ता है, क्योंकि कक्ष का अर्थ होता है बगल में और कुप और सर भी निकट और आदि का वाचक होता है। कक्ष से इसका विकास इस प्रकार से दिखाया गया है, कक्षे, कक्षम, कक्षम, कक, कह, कहूँ, कह, कौ, को। तीसरा, के लिए इस पर सर का प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। इसमें से के की उत्पत्ति संस्कृत कृते से मानी जाती है, जैसे कृते, किते, किदे, किए, कुए, के। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि की का अंश का विकास प्राकृत केरक से हुआ है, परंतु अब इस मत को कोई स्वीकार नहीं करता और सभी विद्वान प्रथम मत से ही अपनी सहमति प्रकट करते हैं। इस पर सर्ग में दूसरे अंश के अंश लिए के बारे में भी दो मत प्रचलित है। प्रथम मत हार्नली का है जो लिए का विकास संस्कृत लब्धे से सिद्ध करते हैं। दूसरा मत यह है कि लिए का विकास संस्कृत लगने से हुआ है, जैसे लगने, लगे, लगी, लगी, लगे, लिए। कुछ विद्वान संस्कृत लग्न स्मृ से इसकी उत्पत्ति सिद्ध करते हैं, जैसे संस्कृत में लग स्मृ, अभ्रंश में लग गही, लग गई, लगे, लय, लिए आदि। इस प्रकार अभी तक इसकी उत्पत्ति संदिग्ध है। चौथा, से इस पर सर का प्रयोग करण एवं प्रदान दोनों कारकों में होता है। इसके विकास के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। बिम्स ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत तम से बताई, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त साम्य है और केलाग ने संस्कृत संज्ञा से इसका विकास सिद्ध किया है। हार्नली ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत अस से सिद्ध की है, इसके प्राकृत संतो सूतो आदि रूप बनते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसका संबंध संस्कृत सम ही से बताया, जिसका प्राकृत रूप सही बनता है जिससे गुण संधि होकर से बना है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसका विकास संस्कृत के सम एन से सिद्ध किया, जैसे सम एन सही सही से। पांचवा का के की। इन परसर्गों का प्रयोग संबंध कारक में होता है क्योंकि हिंदी पुल्लिंग एकवचन में का एकवचन में के और स्त्रीलिंग में की का प्रयोग किया जाता है। हार नली के लागता भीम्स का विचार है कि इन सभी परसर्गों का विकास संस्कृत कृत से हुआ, जैसे कृत करितो करियो केरो। स्वार्थों का सहित केर को केरो करा का कर केर को आदि। केलाग ने इसके अतिरिक्त संस्कृत कृत के प्राकृत रूप किदह या कदह से भी इसका विकास संभव बताया है। पिशेल तथा कुछ अन्य विद्वान इसके उत्पत्ति संस्कृत कार्य से मानते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भी केर का विकास संस्कृत कार्य से ही स्वीकार किया है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने का विकास प्राकृत क से सिद्ध किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का मत है कि संबंध कारक के इन प्रश्नों का संबंध कृत धातु से। का विकास संस्कृत कृत से हुआ है, जैसे क का के की दोनों का के ही विकारी रूप है क्योंकि बहुवचन बनाने के लिए का के हो जाता है और स्त्रीलिंग में ई प्रत्यय लग जाने से की रूप निष्पन्न होता है। छठा में पर। इन दोनों परसर्गों का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। में की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अंतर्गत अधिक विवाद नहीं है। सभी विद्वान इसका विकास संस्कृत मध्य से मानते, जैसे मध्य मध्य मज्जी मही मई मय मे। गोविंद नारायण मिश्र ने में का विकास अधिकरण कारक की संस्कृत विभक्ति इसमें प्राकृत विभक्ति म यानी प्रतिमे से सिद्ध किया है, जैसे संस्कृत इसमें प्राकृत में मी ही हिंदी में मई मैं में, परंतु मत मान्य नहीं है। पर की व्युत्पत्ति के बारे में पर्याप्त मतभेद मिलता है, जैसे केलॉग डॉक्टर वर्मा आदि ने इसका विकास संस्कृत ऊपरी से सिद्ध किया है क्योंकि अपभ्रंश में इसके ऊपरी ऊपर उवरी आदि रूप मिलते हैं। ब्रजभाषा का पय परसर्ग निश्चय ही ऊपरी से निकला है, जैसे संस्कृत से ऊपरी परी पई पय। कुछ विद्वान पय का विकास संस्कृत प्रीति से भी मानते, जैसे प्रति पति पई पय। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पय का विकास संस्कृत पार्श्वे से सिद्ध किया है, पार्श्वे पाहे 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 पय। हरनली तथा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने पर का विकास संस्कृत परे से सिद्ध किया, जैसे संस्कृत परे प्राकृत में परी हिंदी में पर। यही मत सर्वथा समीचीन है। परसर्गों की तरह प्रयुक्त हिंदी के अन्य शब्द। पहला अंदर। हिंदी में शब्द का प्रयोग अधिकरण कारक में होता है, जैसे हमारे अंदर उनके अंदर घर के अंदर। हिंदी में यह फारसी से आया है। दूसरा आगे। हिंदी में इस परसर्ग का प्रयोग भी अधिकरण कारक में होता है और यह संबंध कारक के चिन्ह के रे नी के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे घर के आगे मेरे आगे अपने आगे आदि। इसका विकास संस्कृत अग्रे से हुआ है, जैसे अग्रे अग्गे आगे। तीसरा ऊपर। यह व्यधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्ह के रे ने के साथ प्रयुक्त होता है, जैसे महल के ऊपर मेरे ऊपर उनके ऊपर आदि। इसका विकास संस्कृत ऊपरी से हुआ है, जैसे ऊपरी ऊपरी ऊपर। चौथा ओर। इस परसर्ग का प्रयोग व्यधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों के साथ होता है, जैसे घर की ओर हमारी ओर अपनी ओर आदि। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसका विकास संस्कृत अवतार अवार से सिद्ध किया है, परंतु यह फारसी के तरफ शब्द का हिंदी अनुवाद ज्ञात होता है। पांचवा कारण। इसका प्रयोग संबंध कारक के चिन्हों के साथ करण कारक के अर्थ में होता है, जैसे मेरे कारण उनके कारण तुम्हारे कारण आदि। यह परसर संस्कृत से लिया गया है। छठा खातिर या वास्ते। इसका प्रयोग संप्रदान कारक के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरी खातिर उनकी खातिर मेरे वास्ते उनके वास्ते आदि। ये दोनों ही शब्द अरबी से लिए गए। सातवां नीचे। इसका प्रयोग अधिकरण में अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरे नीचे उनके नीचे घर के नीचे आदि। इसका विकास संस्कृत नीचे से हुआ है। आठवां पास। इसका भी प्रयोग अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरे पास उनके पास घर के पास आदि। इसका विकास संस्कृत पार्श्वे से हुआ है, जैसे पार्श्वे पश्चे पश पास। नौवां पीछे, इसका प्रयोग अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरे पीछे, घर के पीछे आदि। इसका विकास संस्कृत पश्चे से हुआ है, जैसे पश्चे, पश्चे, पीछे, पीछे। दसवां बाहर, इसका प्रयोग भी अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे घर के बाहर, नगर के बाहर। इसका विकास संस्कृत बहिर से हुआ है। ग्यारह बिना, इसका प्रयोग कर्म कारक के अर्थ में कभी संबंध कारक के चिन्ह बिना और उसके साथ होता है, जैसे राम बिना मेरी सुनी, अयोध्या मेरे बिना, उनके बिना आदि। इसका विकास संस्कृत बिना से हुआ है। बारहवां बीच, इसका प्रयोग भी अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरे और तुम्हारे बीच, घर के बीच आदि। इसका विकास संस्कृत बीच या यचस से हुआ है। तेरहवां भीतर, इसका प्रयोग भी अधिकरण के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे घर के भीतर, मेरे भीतर आदि। इसका विकास संस्कृत अभ्यंतर से हुआ है, यथा अभ्यंतर, भिंतर, भित्तर, भीतर, भीतर। चौदहवां मारे, इसका प्रयोग करण कारक के अर्थ में संबंध कारक के चिन्हों सहित होता है, जैसे भय के मारे, जाड़े के मारे, गर्मी के मारे, हमारे मारे आदि। इसका विकास संस्कृत मारितेन से हुआ, जैसे मारितेन, मारियेण, मारिये, मारे। पंद्रहवां सात संग समेत, इनका प्रयोग संपर्क स्थापित के लिए संबंध कारक चिन्हों सहित होता है, जैसे मेरे साथ, उनके साथ, इन सबके समेत आदि। इनमें से सात का विकास संस्कृत सार्थे से हुआ, जैसे सार्थे, सत्य, साथ, साथ। समेत का विकास संस्कृत सहित से हुआ है, और संघ का विकास संस्कृत संघ से ही हुआ है। हिंदी के सर्वनामों का विकास, हिंदी सर्वनामों का विकास वैदिक एवं लौकिक संस्कृत से हुआ है, परंतु प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं तक आते आते इनमें पर्याप्त परिवर्तन हुए, तथा सर्वनामों के कई विकारी रूप आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में मिलते हैं। इसी तरह हिंदी में भी सर्वनामों के कई रूप प्रचलित हैं, उनमें से मुख्यतः सर्वनाम के अभिकारी, विकारी एवं संबंध कारक संबंधी उन रूपों का विवेचन यहाँ किया जाएगा, जो बहुवचन एवं एकवचन, बहुवचन तथा स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में हिंदी के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। साधारणतया हिंदी में आठ प्रकार के सर्वनाम प्रचलित हैं। पहला पुरुष, पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा नित्य संबंधी, पांचवां प्रश्नवाचक, आठवां अनिश्चयवाचक, सातवां निजवाचक और आठवां आदरवाचक। पहला पुरुषवाचक, इस सर्वनाम की हिंदी में केवल उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के रूप मिलते हैं। अन्य पुरुष के साथ निश्चयवाचक सर्वनाम के समान होते हैं, अतः इनका विकास निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही दिखाया जाएगा। क उत्तम पुरुष, इसके मुख्य रूपांतर इस प्रकार मिलते हैं। मूल रूप मैं, एकवचन में, बहुवचन में हम। विकृत रूप मुझ, एकवचन में यानी मुझे, बहुवचन में हम यानी हमें। संबंध कारक में एकवचन मेरा, बहुवचन में हमारा। मैं, कामता प्रसाद गुरु ने मैं का विकास संस्कृत अहम से सिद्ध किया, जैसे अहम, म, अहम, मैं। परंतु यह मत मानने बीम्स, केलाग, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसका विकास संस्कृत मया से मानते हैं, जैसे मया, मई, मई, मैं। इसकी अनुरानुसिकता के बारे में डॉक्टर चटर्जी को विचार है कि संस्कृत इन का प्रभाव है, इसी कारण डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने इसका विकास संस्कृत मया इन से स्वीकार किया। इसका अभ्रंश में मई रूप मिलता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का विचार है कि मया से विद्यमान म के प्रभाव से यहाँ अनुनासिकता का आ गई है। वैसे भी संस्कृत मया से इसका विकास पाना सर्वथा उचित है, एन को जोड़ना समीचीन ज्ञात नहीं होता। हम, इसके विषय में सभी विद्वान एक मत है, और इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत अस्म से हुई है, अस्म, अम, हम, हम। मुझ, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका विकास प्राकृत के रूप म तथा अभ्रंश रूप मज से माना। निश्चय इसका विकास संस्कृत मह्यम से हुआ है, जैसे मह्यम, मज, मज, मुझ। पहले प्राचीन हिंदी में मज का प्रयोग होता था, किंतु पीछे तुझ के सादृश्य पर मज में भी इसका उकार होने लगा। मेरा, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी के मत से इसका विकास संस्कृत ममकेर से हुआ है, जैसे ममकीर, ममीर, मेर, आ, मेरा। केलाग, पिशल, तेसितोरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका विकास मह्य से माँ में केरक जोड़ने से माना है, जैसे मह्य केरक, महकेरो, मारो, मारो, मेरा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसका विकास दो तरह से बताया है, एक तो संस्कृत माय धन कृतक, महाधन कीरक, मेरा यानी मेरा, दूसरे संस्कृत मम धन कृतक, मम धन कीरक, ममेरा यानी मेरा। दूसरा विकास अधिक समीचीन ज्ञात होता है हमारा। बॉब ने इसका विकास संस्कृत अस्मदीय से माना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसकी उत्पत्ति अम्हकार को से मानी, जैसे अम्हकार को अम्ह आर ओ अम्हारो हमारा। डॉक्टर उदयनाथ तिवारी ने इसका विकास संस्कृत अस्मकर से माना है, परंतु वास्तव में इसका विकास संस्कृत अस्मदन कार्यक से हुआ, जैसे अस्मकार्य अम्ह केरो एरो अमारो अमारी हमारी हमारा। ख मध्यम पुरुष, इसके मुख्य रूपांतर इस प्रकार मिलते हैं। मूल रूप तू, बहुवचन एक वचन तू, बहुवचन तुम। विकृत रूप तुझ, एक वचन में बहुवचन में तुम। संबंध कारक में तेरा, बहुवचन में तुम्हारा, तू तुम। हारनरी, डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आदि ने इसका विकास संस्कृत त्वम से माना है, किंतु तेसी तोरी ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत त्वकम से विकसित अभ्रंश तुह से सिद्ध किया, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका विकास संस्कृत त्वया से दिखलाया, जैसे संस्कृत त्वया प्राकृत में तुम, तुह अभ्रंश में तुह तुम। इसका विकास संस्कृत त्वम से ही मानना अधिक समीचीन हो, क्योंकि उसी रूप का पाली में तुम, प्राकृत में तुम मिलता है, इसलिए हिंदी के तू और तुम दोनों ही रूप संस्कृत त्वम से विकसित हुए हैं। तुझ, पिशेल मत शरीर ने मुझ तुझ की उत्पत्ति संस्कृत भयम के आधार पर कल्पित रूप तुयम से मानते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी आदि ने इसका विकास संस्कृत तुभ्यम से माना है, जैसे तिभ्यम तुझ तुझ, परंतु डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे वैदिक रूप तुय से विकसित माना है, जैसे तुय तुझ तुझ, तेरा तुम्हारा। बॉफ ने इसका संबंध इसकी उत्पत्ति तदीय से स्वीकार किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन सभी का संबंध करक, केरा, करो, करा आदि प्राकृत प्रत्ययों के प्रभाव से माना है, जैसे तुम कर को तुम अरओ, तुम्हारा तुम्हारो तुम्हारा। डॉक्टर उदयनाथ तिवारी ने तेरा का विकास संस्कृत तव धन कीर से और तुम्हारा का विकास तुम युष कीर धन कीर से माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने तेरा का विकास संस्कृत तुभ्यम धन कृतक और तव धन कृतक से तथा तुम्हारा का विकास युष्मत या युष्मे धन कारक से स्वीकार किया है, जैसे तुभ्यम कृतक तुह कीरक त्वेर तेरा, तव धन कीरक से तवरय तेरा और युष्म धन कारक से तुम्हें, कारको तुम्हारो तुम्हारा। अतः निश्चित है कि तेरा का विकास अभ्रंश के तवेरव और तुम्हारा का विकास अभ्रंश के तुहारो या तुम आरव से हुआ है। दूसरा, निश्चयवाचक। हिंदी में इस सर्वनाम के दो प्रकार के रूप प्रचलित हैं, निकटवर्ती रूप और दूरवर्ती रूप। निश्चयवाचक का निकटवर्ती रूप यह है और दूरवर्ती का रूप वह। क, निकटवर्ती यह के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। मूल रूप एक वचन में यह, बहुवचन में ये। विकृत रूप एक वचन में इस, बहुवचन में इसे यानी इन्हें, यह। इसका विकास सभी विद्वानों ने संस्कृत एष से माना है, जैसे एष एस एसो एहो यह ये। डॉक्टर चटर्जी ने इसका विकास संस्कृत एत से माना है। हार्नली, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी आदि ने इसकी उत्पत्ति संस्कृत एते से मानी है, जैसे एते ए ए ए ये। इस, भीम्स ने इसका विकास संस्कृत अस से माना है, परंतु डॉक्टर चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसका विकास संस्कृत एतस से दिखाया है, जो सर्वथा समीचीन, जैसे एतस एतस एस इस इन। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इनके नन में संस्कृत संबंध कारक बहुवचन के चिन्ह अनाम का प्रभाव स्वीकार किया है। कुछ विद्वान इसका विकास संस्कृत एतुइन से मानते हैं। डॉक्टर सुभद्र झा ने कल्पित रूप इणाम से इसका विकास सिद्ध किया। डॉक्टर उदयनाथ तिवारी ने इसे संस्कृत इश्यताम से विकसित बताया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे संस्कृत ईशाम से विकसित मानते हैं, परंतु इसका विकास संस्कृत इश्यताम से ही जान पड़ता है, जैसे एतेषाम एतानाम याण इण इन इन। इसी का विकृत रूप इन्हें है। ख दूरवर्ती वह के रूप इस प्रकार मिलते हैं। मूल रूप एक वचन वह, बहुवचन में वे, विकृत रूप उस या उसे, बहुवचन में उन या उन्हें वह। डॉक्टर चटर्जी ने वह का विकास संस्कृत के कल्पित रूप अव प्राकृत के ओ से माना है। कांत प्रसाद गुरु ने इसे संस्कृत के सह प्राकृत के सो का विकसित रूप माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संस्कृत अदस प्राकृत के अह अभ्रंश के ओह से इसका विकास सिद्ध किया है। ट्रंप ने इसका विकास संस्कृत स्व से माना है। केलायक ने इसे संस्कृत एश एसु आदि से विकसित माना है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसका विकास संस्कृत असव से सिद्ध किया, जैसे असव, असु, असु, एहो, ओ, वह। डॉक्टर चटर्जी की तरह डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भी इसका विकास संस्कृत अवह मूल भारोपीय अवश्य माना है, अतः वह की उत्पत्ति संदिग्ध है। उस डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसका विकास संस्कृत अमुष्य से माना है। डॉक्टर उदयनारायण तिवारी भी इसी मत से को ठीक बताते हैं, जैसे अमुष्य, आमुष्य, औस, उस। परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसका विकास संस्कृत के कल्पित रूप अवश्य से माना है, जबकि संस्कृत अमुष्य से इसका विकसित होना ठीक जान पड़ता है। उन डॉक्टर उदयनारायण तिवारी ने इसका विकास संस्कृत अमुष्याम से माना है, जैसे मुस्याम, अमुनाम, औड़ उण उन। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे संस्कृत अमुना, अमुनी, अमुन और अमाना से विकसित बताया है और यह संभावना व्यक्त की है कि इन तीन किन के सादृश्य पर उन धनु रूप में भी इसका विकास हो सकता है। वैसे इसकी उत्पत्ति अनिश्चित है, उन्हें इसी का विकृत रूप है।